శాంతి. ఓం శాంతి. आज की दुनिया में कितने प्रकार के रोग हैं, तन के तो रोग है ही हैं, लेकिन साथ साथ मन के भी कितने रोग हैं। तन और मन दोनों ही रोगी बन गए हैं। और बाबा कहते हैं इन सब जो भी रोग हैं, इन सब रोगों का जो जड़ है वो एक ही है, और वो जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान सभी रोगों की जड़ है, चाहे शरीर के रोगों की चाहे मन के रोगों की। अब इस पर भी बहुत विचार सागर मंथन हो सकता है। दुनिया में आवाज नहीं आ रही है भाई, थोड़ा जोर से। दुनिया में तो ये तो मानते ही हैं कि 80% शरीर के रोगों का कारण मन है, और 20% कुछ और कारण से शरीर के रोग होते हैं। तो 80% तो मन ही कारण है अनेक रोगों का। तो मन के रोगों का भी कारण क्या है? देह अभिमान। तो ऑटोमेटिकली तन के रोगों का भी कारण, तो जड़ तो देह अभिमान ही है। तो देह अभिमान से कितना नुकसान हुआ है इस संसार का, वो भी एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। क्या क्या नुकसान हुआ है देह अभिमान के कारण। ये जो लड़ाई चल रही है इसका भी तो मूल कारण देह अभिमान ही है। तो आज बाबा ने उसका कारण बताया है जिससे दुनिया का पतन हुआ है, और उसमें भी भारत का पतन सबसे पहले हुआ। तो भारत का पतन होने से दुनिया का पतन हुआ। अब भारत का उत्थान होगा तो दुनिया का भी उत्थान होगा। तो आज बाबा ने कैसे पतन होता है, कैसे फिर उत्थान होता है, वो आज बाबा ने बताया। भाई पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा, आवाज इतना हो रहा है ना, प्लीज आवाज नहीं करे, कुर्सियों की आवाज नहीं करे, यहाँ जगह नहीं है, सब खुला हुआ है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इतने आ जाएंगे, नजदीक या आगे स्थान हो तो बैठो, नहीं तो जो है वो सुनो। बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं तो श्रीलिंग होती है वो विसल बजती है, इसलिए ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 10 मार्च आज 10 मार्च 2026 है। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। किससे पतन हुआ है? देह अभिमान की बीमारी से। कृपया कुर्सियों की आवाज नहीं करे, बिल्कुल धीरे से रखे। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो तो फिर उत्थान होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब बनेगी? दुनिया का तो हाल बताया, लेकिन हम बच्चों का तो अभी उत्थान उत्थान है ना, और उत्थान होना माना कर्मातीत अवस्था को पाना। तो कब होगी हमारी कर्मातीत अवस्था? उत्तर है जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। शरीर के रोग चाहे मन के रोग, उनका कारण देह अभिमान है। अब कृपया ये और सब मत आए, यहाँ कुर्सियां ही नहीं है, इसने सब आते जा रहे, नीचे से ही रोके, ऊपर नहीं आए, नीचे ही सुने, नीचे भी बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। नीचे वाले सुन रहे होंगे, वो सबको रोके ऊपर आने के लिए, यहाँ जगह नहीं है, कुर्सियां नहीं है, आवाज बहुत हो रहा है और पीछे सुनाई भी नहीं दे रहा है, नीचे जाकर के सुन सकते हैं प्लीज। नीचे बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन लगी हुई है, वहां सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कब होगी? बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया है। उत्तर है, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। इतने सब जो रोग है ये कर्म भोग ही है, चाहे तन के रोग चाहे मन के रोग, उनका कारण तो कर्म ही है। तो उसके लिए चाहिए योग बल। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, प्लीज और मत आए यहाँ, सब नीचे जाएं। ये कुर्सियां कहाँ से आ रही है इतनी सारी? सबको रोके वहां, किसी को आने नहीं दे, बाहर से रोके। जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। कर्मातीत अवस्था कब होगी? जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा रोग है। छोटे बड़े आज सब के अंदर देह अभिमान का रोग तो भरा ही हुआ है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे और चलन भी सुधरे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, कौन है राही? हम सब आत्माएं। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, देवताएं भी मनुष्य हैं, थे तो देव मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुम विश्व के मालिक थे, हीरे जैसे ही कौड़ी जैसे जैसा हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। अब बंद कर दो सब दरवाजे, ये सब प्लीज बंद कर दो। कोई अभी कोई नहीं कुर्सी पर बैठे, कोई नहीं, बस सब नीचे जाएं। वहां ही बाहर ही खड़े रहो और मना कर दो। हाँ प्लीज, जो भी अभी और कुर्सी मत निकालो, कुछ भी नहीं, मना कर दो, वहीं खड़े रहो, कहो पीछे जाओ, नीचे जाओ। हाँ बस, तो बाबा कहते हैं तुम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, तुम विश्व के मालिक थे, हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। हाँ, पलटा खाया है माना परिवर्तन हुए हो। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुविनेट हो रहे हो, बदल रहे हो। कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की 5%, हाँ कोई 5% परिवर्तित हुए हैं, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है, सूरत तो वही है, वही दो हाथ दो पैर दो कान एक नाक दो आंखें वही है, सूरत वही है, पर सीरत बदलती जा गई, पतन हुआ, अभी फिर सीरत बदल कर उत्थान हो रहा है। तो सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवताएं थे, उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वो गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? भारत जो इतना साहूकार था उनका फिर ये डाउनफॉल कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, ये मनुष्यों को समझ में ही नहीं आता। वो भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझ सकते हो, जिनकी सूरत सुधरी है ना, सूरत भी सुधरी सीरत भी सुधरी। बाप कहते हैं बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्माभिमानी थे, फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो दे अभिमानी बन पड़े हो। ये दे अभिमानी की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। अपने अंदर सब चेकिंग करे, मेरे अंदर दे अभिमान की कितनी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है ये दे अभिमान की। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, किसने बनाया ऐसा सुखी, ये कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ, क्यों तुम्हारा पतन हुआ, क्यों गिरे, इसका कारण बाबा बताते हैं। अपने धर्म को तुम भूल गए। एक तो आत्मा का धर्म शांति है, ये भी भूल गए, फिर देह में आए भले लेकिन देवी देवता थे ये भी भूल गए। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट अ पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। हीरे से कौड़ी जैसा भारत क्यों बन गया? मुख्य कारण देह अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। क्यों दे अभिमान आया, क्यों ये हुआ, बाबा कहते प्रश्न नहीं उठ सकता, ये ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना जो साहूकार था फिर वो गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। तो बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने, तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। ये हाल क्यों ऐसा हो गया? देह अभिमानी बने तो ये हाल होने लगा। सीढ़ी में दिखाया है ना कैसे डाउन फॉल हुआ। वर्थ नॉट अ पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। कौड़ी तुल्य बनने का मुख्य कारण भी देह अभिमान है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु तो लाखों वर्ष लगा दिए देही अभिमानी बनने में। तो बाबा के देख सके लगता है देह अभिमानी बनने में पूरे 5000 साल लगे, तो वो तो समझते लाखों साल करोड़ों साल हो गए। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख लगा दी है, आजकल समझदार है। आज बाबा कहते हैं समझदार है क्रिश्चियन लोग। किस बात में समझदार है? बाकी बातों में नहीं, लेकिन किस बात में समझदार है? बाबा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इसमें समझदार है वो। भारतवासी ये भी नहीं समझ सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता था, वही पैराडाइज था क्राइस्ट के 3000 साल पहले। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जानते ही नहीं है। कई ऐसे भी है जो समझते हैं भारत तक कभी वो पैराडाइज था ही नहीं, स्वर्ग था ही नहीं। ये जो हम भारत का गायन करते ये कभी था ही नहीं, ऐसे भी कई मानते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। बच्चों में तो ज्ञान है पर थोड़े बच्चों में, सब नहीं, थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमको इतना ज्ञान है हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमको क्या ज्ञान सुनाएगा कोई, ऐसे भी कही है देह अभिमानी। समझते हमारे जैसा कोई है नहीं, तो बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ आकर राम राज्य स्थापन करो, आत्मा को जरूर कभी से आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उस पतित पावन से कभी सुख मिला है तभी याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरे देही अभिमानी नहीं बनते। बाबा के बच्चे भी पूरे देही अभिमानी नहीं बनते हैं। कैसे पता चलता है देही अभिमानी नहीं बने हैं? छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, तो छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाना ये भी तो देह अभिमान की निशानी है। तो बाबा कहते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही बाप को याद करेंगे। अब देही अभिमानी नहीं है तो बाबा की याद भी नहीं है। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। देही अभिमानी नहीं तो बाबा की याद भी नहीं तो खुशी भी नहीं। तो खुशी है माना बाबा की याद है, और बाबा की याद है माना देही अभिमानी है। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए तो गाया जाता है। खुशी में क्या गाया जाता है? जब खुशी में रहते हैं तो गायन है, परवा थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वो मिल गया, तो बाकी क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्रोध क्यों आता है? जरूर उसके पीछे कोई इच्छाएं होती ना, कई इच्छाएं हैं। तो परंतु जो चाहिए था वो पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर मिल गया तो और क्या चाहिए? उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, बाकी क्या चाहिए? हाँ भाई चाहिए कुछ? जो समझते नहीं और भी कुछ चाहिए हाथ उठाए। देखो कोई को नहीं, कोई को कुछ नहीं चाहिए। तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता न सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे। कैसे पता चलता कि देही अभिमानी थे देवताएं? वो जानते थे कि कि एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है, ये देवता ही जानते थे। आज के मनुष्य आत्मा को जानते ही नहीं, तो इसलिए मृत्यु से डरते हैं। लेकिन ये तो चोला बदलना है, तो मृत्यु से तो सत्युग में डर नहीं होगा, क्योंकि पता है बस चोला बदल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जानते थे कि एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है, परमात्म अभिमानी नहीं थे, आत्माभिमानी जरूर थे देवताएं। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना और क्या बनेंगे? एक तो बाबा याद रहेगा, दूसरा खुशी होगी, और क्या होगा? और तुम बहुत मीठा बनेंगे। देही अभिमानी होंगे तो मीठा बनेंगे, कड़वे बोल नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना, और उससे भी बड़ा क्या, बंदरपना आ जाता है। बंदरपना, बाबा बंदरपना कहते हैं, क्यों? बंदर में सबसे जास्ती ये विकार होते हैं, तो बंदरपना आ जाता है देह अभिमान के कारण। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। बाबा ने क्या सर्टिफिकेट दिया, अच्छे अच्छे बच्चे भी देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो, बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी, ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है ही, क्यों गिरा, क्यों पतन हुआ, डाउनफॉल की जड़ है ही एक ही कारण, कौन सा? देह अभिमान। देह अभिमान बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। भले मुरली सुनते हैं, समझते हैं ब्रह्मा बाबा दे रहे हैं, लेकिन ये भगवान का डायरेक्शन है, भगवान हमें ये कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये बच्चे नहीं समझते हैं। तो हमेशा समझो, शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद न करने से ही देह अभिमान आ जाता है। दोनों उत्परोत है, देह अभिमान आने से शिव बाबा याद नहीं रहता, और शिव बाबा को याद न करने से देह अभिमान आ जाता। सारी दुनिया अब देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं, भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फिर फेल हो जाते हैं, वो खुशी वो नशा नहीं रहता है। फिर खुशी नशा नहीं, देह अभिमान है, तो फिर क्या कर लेते हैं? फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते, बड़े विकर्म भी होते हैं, थोड़ा छोटा मोटा विकर्म नहीं, बहुत बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं, जिस कारण, अब उसकी रिजल्ट क्या होगी, बड़े विकर्म करेंगे तो, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। तो बाप कहते हैं, ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है, भगवान की ये गवर्नमेंट है, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है, उस गवर्नमेंट का राइट हैंड होता है चीफ जस्टिस ना, वही फिर कैसे राष्ट्रपति को भी वो ओथ दिलाता है, तो इस प्राइम मिनिस्टर सब मना चीफ जस्टिस होता है। तो बाबा कहते हैं, तो मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड कौन है, वहां तो चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, और यहां कौन है, धर्मराज। इस गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजा खाते हैं। इस पर भी एक कहानी है, गर्भ जेल में सजा खाने की भी कोई कहानी होगी शास्त्रों में, तो उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की है। महिमा तो एक बाप की ही है, दूसरे कोई की भी महिमा है नहीं, और किसी की महिमा नहीं है सिवाय एक बाप के। इसीलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, सबसे ऊंची जयंती वर्थ डायमंड, हीरे तुल्य वो शिव जयंती है, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो, यह देही अभिमानी अवस्था कितना समय चलती है, कितना समय चलती है देही अभिमानी अवस्था, 2500 साल, 21 जन्म, 21 जन्म देही अभिमानी अवस्था चलती है, और 63 जन्म देह अभिमानी अवस्था चलती है। तो बलिहारी तो एक की गाई जाती है, जो हमको देही अभिमानी बनाने वाला है उसकी महिमा है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसको भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उसकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए शिव बाबा की, वो कब आया। शिव कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देह अभिमान के कारण ही डाउनफॉल हुआ है। ऐसा हो, हाँ, डाउनफॉल हो देह अभिमान के कारण, तब तो बाप आए फिर से राइज करने, फिर से उत्थान करने बाप आए। एकदम पतन हो तब तो बाप आए और फिर से उत्थान करे। ऐसा हो तब तो बाप आए और राइज करे। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है देह अभिमान, सबसे बड़ा अज्ञान, सबसे जास्ती अज्ञान है देह अभिमान। आत्मा का तो किसको पता ही नहीं है। आत्मा सो फिर परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए। आत्मा अगर कहते भी है फिर कहते आत्मा सो परमात्मा, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं। इसलिए डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। यह खेल बना हुआ है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ, ये विश्व इतना ऊंचा था वो पतन कैसे हुआ, बाबा कहते कोई नहीं जानते। वो तो समझते हैं ये साइंस ने तो बहुत तरक्की की है, साइंस ने तो बहुत तरक्की की है, ऐसे समझते हैं। ये नहीं समझते कि दुनिया तो और ही पतित नर्क बन गई है, देह अभिमान बहुत है। तो बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। कि सारी अभी आधा एक पूरा पेज भी ना, दोनों पन्ने भी पूरे नहीं हुए, और कितनी बार बाबा ने देह अभिमान का। बाप कहते अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी तो ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश। मोह का अंश भी तो देह अभिमान का कारण है ना, देह अभिमान है इसीलिए मोह भी जाता है। कुछ न कुछ है, सीरत सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए तो तब उसका क्या मिसाल है, बहुत मीठा। हाँ, सतयुग में शेर और बकरी भी एक साथ जल पीते हैं, शेर भी कितना मीठा होगा। शेर और बकरी एक साथ जल पीते हैं तो जानवर भी इतने मीठे हैं। तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहां कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं, नंबर वार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, वो मुश्किल होती है। बहुत देह अभिमान में आते हैं, पता ही नहीं पड़ता है उनको, क्या पता नहीं पड़ता, इतना देह अभिमान में आ जाते हैं कि हमको ये मत कौन देते हैं, कौन कह रहे हैं बच्चे मीठे बनो, बच्चे देह अभिमान छोड़ो, ये कौन कह रहा है, पता ही नहीं पड़ता उनको कि हमको ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी, शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा, ब्रह्मा के बिगर श्रीमत कैसे दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही सतयुग की स्थापना करते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ही श्रीमत देते हैं। तो शिव बाबा कहते इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा, स्थाई रथ तो हमारा यही है, ब्रह्मा बाबा हमारा स्थाई रथ है। हाँ, दे अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। कितनी बड़ी बात, दे अभिमान में आकर उल्टे सुलटे कार्य मत करो, मुफ्त में बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम पद पाएंगे, फिर पढ़े के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। बहुत कहते हैं कि भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, उनको समझाना पड़े, पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बतानी पड़े, तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा न सके, परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, ये समझाने के लिए भी देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वो ही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है, इनके अभी बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं इनके, यानी ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी तो बहुत झंझट है, बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है, सारे यज्ञ को संभालना, हाँ कितनी फिक्रात रहती होगी ब्रह्मा बाबा को। भल समझते हैं, हाँ बाबा ये तो समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियां तो रचनी होती है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती तुम बच्चे देही अभिमानी बन सकते हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा पर तो बहुत फिक्रात है, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हाँ ऐसा बोझा नहीं है जितना ब्रह्मा बाबा पर है, बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना, हाँ भाई तुम्हारी संस्था का हेड कौन है, तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा। बड़ी दादी से पूछते थे कि आप यहाँ की हेड हो तो आपकी आपको रात को नींद आती है, हाँ इतना बोझा है आपको, इतने बड़ी संस्था का, इतने सेंटर्स, इतनी समर्पित बहने, इतने भाई बहने, न जाने क्या क्या, तो इतना आपको रात को नींद आती है, तो दादी कहती है मैं हेड नहीं हूँ। एक बार दादी ने अखबार वालों को कहा हेड नहीं हूँ मैं, हेड बन करके ये सोचती नहीं हूँ मैं हेड हूँ, क्योंकि हेड बनना माना हेडेक, दादी ने सीधा कह दिया हेडेक। तो वो आश्चर्य खाने लगे अखबार वाले, हेड नहीं हो? तो कहा नहीं, ये सब है। तो सब हमारी दीदियां बैठी थी और दादियां बैठी थी, तो दादी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि मैं हेड नहीं हूँ, ये सब हमारे साथी है, हम सब एक है, ये सब हमारे साथी है। तो दादी को फिर भी कहा, फिर भी आपके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो दादी ने कहा नहीं, ये सब बटा हुआ है। तो जैसे प्रधानमंत्री होता है, उनका उनका पार्लियामेंट होता है, इसी प्रकार फिर कैसे हमारे जोन्स है, उनका भी जैसे असेंबलीज होती है जोन्स में, तो उसी प्रकार दादी ने सारा विस्तार बताया कैसे ये यज्ञ चलता है। इसीलिए सारा बोझ कोई दादी जी के ऊपर नहीं है, और सब जोन्स है, सब जोन्स है, फिर कई सेंटर्स है, तो हर एक की जिम्मेदारी अपनी अपनी है, सब कोई दादी की जिम्मेदारी थोड़ी है। तो इसीलिए दादी ने बहुत स्पष्ट रूप से समझाया कैसे ये संस्था चलती है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना, प्रजा पिता ब्रह्मा, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना, भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसको भी पता नहीं है। कब तक तुम नहीं जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ न सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। अब ये वर्ल्ड हमारा जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं उसमें तो बहुत कुछ बताते हैं स्कूलों में कॉलेजेस में। तो बाबा कहते पढ़ा लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए, भारत हीरे जैसा था वो फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे हम समझाते हैं, ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं, समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। अभी तो हमारा विज्ञान भवन में भी बहुत प्रोग्राम्स हुए हैं, तो बाबा कहते वो हॉल लेना चाहिए, अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दो, हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप ही आएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है, हाँ कोई फी भी नहीं है, कोई टिकट नहीं है, प्रोग्राम्स में आओ भले फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज। तो कई कहते हैं ना, आप लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम रखते हो, आप मुफ्त में देते हो, कोई चार्ज नहीं करते हो, कोई आप टिकट नहीं रखते हो। तो बाबा कहते हैं ये बाबा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, इसमें कोई पैसे से थोड़ी लिया जाता है, ये तो भगवान का ज्ञान है, तो सबके लिए है। तो बाबा कहते हैं पैसे की तो बात ही नहीं है, समझो हमको कोई मिला, हाँ प्रेजेंट करते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं तो हम ले नहीं सकते, उस प्रकार से कहेंगे आप लोग इतना खर्चा कर तो ये आपको हम देते हैं। तो बाबा कहते तुम ऐसे ले नहीं सकते, हाँ परिवार है वो और बात है, लेकिन बाहर वाले कोई आते हैं और वो ऐसे कहे तो फिर हम ले नहीं सकते हैं, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, चलो आप बहुत जबरदस्ती कर रहे हो, बाबा की भंडारी में डालो, हाँ बस जरूर डालो, क्योंकि कई कार्य चलते हैं यहाँ, तो सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम तो नहीं ले सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा। तब ये शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा को थोड़ी देना है, शिव बाबा तो दाता है, मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर कर देना पड़े, मैं पक्का शराफ हूँ, पक्का शराफ हूँ, अच्छा हाँ, उसके बाद मम्मा की मुरली है वो भी सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी सीरत यानी चलन सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है, अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। रिगार्ड देना माना सबको सम्मान देना। आजकल तो छोटे भी सम्मान चाहते हैं। पहले कहते थे बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो, पर आजकल छोटे भी कहते हमको भी सम्मान दो। हाँ, हम प्यार तो दो ही लेकिन सम्मान भी हर एक चाहते हैं। तो वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा, यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा, वो रिकॉर्ड बन जाएगा। और ये आवाज कि या देखो हर एक एक दो को कितना रिगार्ड देते हैं, तो ये रिकॉर्ड ये आवाज सब जगह बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़ों को तो रिगार्ड दो ही और छोटों को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। उसको सम्मान देकर उसको खुश करना कर देना ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है ये। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। ये मम्मा का स्लोगन था, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अब मम्मा की ये दो मुरलियां हैं, हम मम्मा की एक एक मुरली में भी एक ही पॉइंट पर कितनी गहराई से मम्मा सुनाती थी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, तो पहली मुरली की हेडिंग है तमोगुणी माया का विस्तार। तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये तीन शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीन गुण इकट्ठे चलते हैं, सतो रजो तमो गुण इकट्ठा चलता है, मनुष्य समझते हैं। परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं या तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते हैं। जब सतयुग है तो सतो गुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुणी नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं, ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है कि तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी हो, ऐसे नहीं कोई तमोगुणी भी हो वहां, सतोगुणी माना सब सतोगुणी, सारी सृष्टि सतोगुणी हो। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है सदा, ये तीनों गुण सदा से ही है। बाबा कहते, मामा कहती नहीं, ऐसे ही दुनिया चलती आती है, ऐसे नहीं। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतो गुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। जैसे दिन और रात अलग अलग है ना, ऐसे नहीं जब दिन है तो कहेंगे रात भी है, नहीं, रात है तो दिन भी है, नहीं, दिन अलग है रात अलग है, तो मिला नहीं सकते हैं। सतोगुण तमोगुण को मिला नहीं सकते हैं। फिर दूसरी भी एक छोटी एक मुरली है छोटी सी, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। सार नहीं है माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में क्यों ताकत नहीं है? क्योंकि इस सृष्टि में पांच भूतों की प्रवेशता है, पांच भूतों की प्रवेशता है, इसीलिए ही इस सृष्टि को मामा कहते इस सृष्टि को भय का सागर, डरावना भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको इस भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है, मनुष्य पुकारते हैं इस भव सागर से पार करो, तो इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जहाँ किसी को किसी से भय नहीं होगा, वो भी कोई संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहा जाता है, इस संसार को पाप का सागर कहा जाता है, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं तो दो है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर है, दोनों दुनियाएं इसी सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा देखो एक ही पॉइंट पर कितनी गहराई में ले गई। अब अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। उसके अंतर्गत जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रवाजी आत्माएं नहीं हो। आप बहुत जिम्मेवार आत्माएं हो तो रवाजी आत्मा कोई माना ऐसे ही वाली आत्मा नहीं हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो, तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। तो अपनी दिनचर्या बनाओ, कल भी कहा ना, जैसे माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो रखते हैं पर मन को भी मैनेज कैसे करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल से आप सुन रहे हैं हमारी अति मीठी अति प्यारी कानन बहन, जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो और भी समाचार आपको दे रहे हैं। हम सभी की अति स्नेही यज्ञ के अनन्य रत्न बाप दादा और वरिष्ठ दादियों की पालना में पली सरल स्वभाव एवं मधुर वाणी की धनी कोलकाता म्यूजियम सब जोन की इंचार्ज राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कानन दीदी जी ने 9 मार्च 2026 को प्रातः 7:30 बजे कोलकाता के बेले व्यू हॉस्पिटल में अपने भौतिक शरीर का त्याग कर प्यारे बाप दादा की गोद ली। कानन दीदी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में चले। आपके पिताजी गुप्ता जी बहुत ही बाबा के अनन्य बच्चे थे। आपके पिताजी गुप्ता जी एवं माताजी साकार बाप दादा के समय ही ज्ञान में चले और आप भी मात पिता के साथ, आप और आपके बड़े भाई साहब गोपाल भाई जो नीचे शांतिवन में रहते हैं, तो बड़े भाई साहब गोपाल भाई जी दिल्ली पांडव भवन में थे पहले, ज्ञान में चले और 1968 में ही गोपाल भाई जी ने सेवा केंद्र पर रहकर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया। और आप कानन बहन 1971 में समर्पित रूप में ईश्वरीय सेवाओं द्वारा सेवाएं शुरू की और अपने निर्मल शांतादारी जी के साथ कोलकाता और ईस्टर्न में अनेक राज्यों में ईश्वरीय सेवाएं की। कुछ समय से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पिछले 3-4 दिनों से आप हॉस्पिटल में ही आपका इलाज चल रहा था। हम ईश्वरीय परिवार की ओर से ऐसी तपस्वी त्यागी और श्रेष्ठ आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बहुत सुंदर उन्होंने रिट्रीट सेंटर बनाया कलकत्ता में, बहुत ही सुंदर है। किसने देखा है? जिसने देखा वो रिट्रीट सेंटर हाथ उठाओ। बस 2-4 ने देखा। अच्छा, और दूसरा भी समाचार है, हमारी गीता बहन जो पहले ज्ञान सरोवर में थी, फिर शांतिवन में रही, शिविर में हमारी मददगार थी, शांति वन के गीता बहन जो कि कल तबीयत बिगड़ी तो उनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट किया, ब्रेन हेमरेज उनको हो गया। तबीयत नाजुक है इसीलिए गीता बहन जी की तबीयत ठीक हो उसके लिए भी सारे सब योगदान दे, कोई भी मिलने न जाए। कई कल तो जैसे ट्रॉमा सेंटर में उनको ले गए क्योंकि कुछ ब्रेन हेमरेज हुआ, कुछ हार्ट पर भी असर आया, बहुत कुछ हुआ, तो ट्रॉमा सेंटर में है और इसलिए कोई भी कई सोचते हम जाके मिले लेकिन कोई भी मिलने के लिए अलाउड नहीं है। कोई भी मिलेगा नहीं इसीलिए कोई भी ट्रॉमा सेंटर में उनसे मिलने के लिए नहीं जाएंगे, डॉक्टर्स ने मना किया है। और कल आप सभी जानते हैं गुलजार दादी का दिन है, गुलजार दादी का अव्यक्त और आरोहण का दिवस है, तो इसीलिए सवेरे 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। सवेरे तो अव्यक्त जो आलोक क्या है दादी गुलजार का जो स्थान है क्या अव्यक्त लोक, तो अव्यक्त लोक में सवेरे तो पहले मुरली के बाद भोग होगा नीचे शांतिवन में, फिर भोग के बाद सब अव्यक्त लोक में जाएंगे वरिष्ठ भाई बहने, और फिर सब जाएंगे, और फिर 10 बजे से डायमंड हॉल में प्रोग्राम होगा, फिर भोग होगा और फिर ब्रह्मा भोजन भी वहीं होगा। तो ये प्रोग्राम तो सबको जो नीचे से आए हैं वो तो उनको बता रहे हैं, बाकी पांडव भवन में जो जाना चाहे वो अगर बसेस मिलती है तो अवश्य जाएं, बाकी डबल विदेशियों के से तो हम पूछेंगे योग के बाद।
12 बजे भोग लगेगा,
12 बजे भोग लगेगा, 10 बजे से वहाँ उनके संस्मरण सुनाए जाएंगे दादी जी के साथ हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा, फिर भोग लगेगा 12 बजे। तो अभी हम सब कानन बहन जी के लिए योगदान अर्पित करेंगे और गीता बहन के लिए भी जिनकी स्थिति काफी नाजुक है तो उनको भी हम योगदान देंगे। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। और दूसरी बात, कल और परसों अच्छा डबल विदेशियों का प्रोग्राम योग के बाद बताऊंगी। अभी हम सब कानन बहन जी और